ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 12। स यदानुव्रतः पुंसाम् पशुबुद्धिर्विभेद्यते अन्य एष तथान्यु अहम् इति भेदगता सति। स यदानुव्रतः पुंसाम् पशुबुद्धिर्विभेद्यते अन्य एष तथान्यु अहम् इति भेदगता सति। स यदानुव्रतः पुंसाम् पशुबुद्धिर्विभेद्यते अन्य एष तथान्यु अहम् इति भेदगता सति। अनुवाद पढ़ लेते हैं। देख इसका, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है, और वह शत्रु तथा मित्र तथा अपने में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमानी से सोचता है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं, अतएव हम एक दूसरे से भिन्न नहीं है। यह तात्पर्य कहाँ तक गया था? आधा आधा से ज्यादा। ये हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज यहाँ तक गया था क्या? मेरे ख्याल में यही से पढ़ लेते हैं। आधा तो पढ़ा हुआ सार्वभौम प्रभु ने पढ़ा था, आधा हम पढ़ लेते हैं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि वह अपने परिवार से विपरीत क्यों हो गया है? जब किसी परिवार का कोई सदस्य किसी शत्रु द्वारा मारा जाता है तो उस परिवार के सारे सदस्य उस हत्यारे के शत्रु बन जाते हैं। परंतु हिरण्यकश्यपु देख रहा था कि प्रहलाद का तो हत्यारे से मैत्री भाव था, है ना? अतएव उससे पूछा, किसने तुम्हें इस तरह की बुद्धि उत्पन्न की है? क्या तुमने स्वयं यह चेतना विकसित की है? चूंकि तुम छोटे से बालक हो, अतएव किसी ने अवश्य ही तुम्हें इस प्रकार सोचने के लिए फुसलाया होगा। प्रहलाद महाराज कहना चाहते थे कि विष्णु के अनुकूल मनोवृत्ति तभी विकसित हो सकती है जब भगवान अनुकूल हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। प्रहलाद महाराज ये कहना चाहते थे कि विष्णु के अनुकूल मनोवृत्ति तभी विकसित हो सकती है जब भगवान अनुकूल हो। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कृष्ण सबके मित्र हैं, श्रुत सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवान कभी भी लाखों जीवों में से किसी के भी शत्रु नहीं होते, वो तो सदा सबके मित्र है, यही असली ज्ञान है। यदि कोई सोचता है कि भगवान उनके शत्रु है तो उसकी बुद्धि पशु बुद्धि है, वह मिथ्या ही सोचता है, मैं अपने शत्रु से भिन्न हूं और मेरा शत्रु मुझसे भिन्न है। क्योंकि शत्रु ने ऐसा किया है अतः मेरा कर्तव्य यह है कि मैं उसका वध करूं। इस भ्रांत धारणा को इस श्लोक में भेदगता असत्य के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तविक तथ्य तो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में पुष्टि की है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ईश्वर के दास के रूप में हम सभी एक हैं और शत्रुता और मित्रता का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि मनुष्य वास्तव में यह समझ ले कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है तो फिर शत्रु या मित्र का प्रश्न कहाँ उठता है। भगवान की सेवा करने के लिए सबको मैत्री, सबके प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। हर एक को चाहिए कि दूसरे द्वारा की गई भगवान की सेवा की प्रशंसा करें और अपनी सेवा पर गर्वित ना हो। यही वैष्णव के सोचने की विधि या वैकुंठ विचार है। सेवा करने के लिए दासों में स्पर्धा हो सकती है, बाह्य रूप से होड़ लग सकती है, परंतु वैकुंठ लोक में तो दूसरे दास की सेवा की प्रशंसा होती है, निंदा नहीं। यह वैकुंठ की स्पर्धा है। यहाँ पर दासों के मध्य शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को पूरी सामर्थ्य भर भगवान की सेवा करने देना चाहिए और हर एक को चाहिए कि दूसरे द्वारा की जाने वाली सेवा की प्रशंसा करे। वैकुंठ के कार्यकलाप ऐसे ही है। क्योंकि हर व्यक्ति दास है अतः हर एक समान स्तर पर होता है और उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा करने दी जाती है। जैसा कि भगवद गीता से 15-15 में पुष्टि होती है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्ट हो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और दास की मनोवृत्ति के अनुसार आदेश देते हैं, परंतु भगवान भक्तों तथा अभक्तों को भिन्न भिन्न आदेश देते हैं। अभक्तगण परमेश्वर की सत्ता को चुनौती देते हैं, अतः भगवान ऐसा आदेश देते हैं जिससे अभक्त जन्म जन्मांतर भगवान की सेवा को भूलता रहता है और प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होता रहता है। किंतु जब भक्त अत्यंत निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान भिन्न रीति से आदेश देते हैं। भगवद गीता 10:10 में भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। प्रत्येक जीव वास्तव में दास हैं, वह ना तो शत्रु है ना मित्र, और हर व्यक्ति भगवान के पृथक पृथक आदेशानुसार कार्य करता है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को उसकी मानसिकता के अनुसार निर्देश देते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ और विशेष रूप से परम पूज्य श्री राधारमण महाराज जी और भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का स्वागत करता हूँ और सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ आप सभी भक्तजन ये सद्भावना बना के रखें जिससे हमारी बुद्धि सही रास्ते में चले, सही मार्ग में चले। सो ये श्लोक प्रारंभ हो रहा है परसों दिन से मेरे ख्याल में, सार्वभौम प्रभु जी ने लिया था और इससे पहले परम पूज्य वैष्णव महाराज जी ने क्लास दिया था, और इन्होंने इसका प्रारंभ किया था कि इसी श्लोक की चर्चा भी दो चार वक्ताओं के द्वारा होनी चाहिए। जैसे आपने सुना वो वाला प्रहलाद महाराज जी का जो बहुत ही क्रांतिकारी श्लोक है, तत्साधु मन्ये, इसकी कक्षा 7 दिनों तक लगातार चलती रही। मेरे ख्याल में सभी भक्तों को आनंद आया होगा। और अंतिम कक्षा दी थी महाराज जी ने, परम पूज्य राधारमण महाराज जी ने, हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने उस दिन आपको फोन लगाया था पर उठाया, बहुत अच्छा। इससे क्या होता है, भक्तों में एक जागरूकता पैदा होती है कि श्लोकानुसंधान करना, एक श्लोक पर इतने भाव भी व्यक्त किए जा सकते हैं 7 दिनों तक। और इसका श्रेय धर्मात्मा जग भी जाता है कि इन्होंने ही कहा था कि भाई करना चाहिए लगातार 7 दिनों तक, और कोई भी बोर नहीं हुआ। सो इस श्लोक में तात्पर्य बहुत बड़ा है, आधा तात्पर्य सार्वभौम प्रभु जी ने किया था और आधा हमने पढ़ा। देखिए श्लोक शब्द का थोड़ा सा हम शब्दों पर दृष्टिपात करें, बड़ा सरल है। स जदानुव्रत पुंसाम पशु बुद्धिर विभिद्यते, ये जो लिखा हुआ है स जदानुव्रत, स माने भगवान। अच्छा ठीक, थोड़ी भूमिका है, प्रहलाद महाराज किसको उत्तर दे रहे हैं? ये वार्तालाप हो रहा है गुरु और शिष्य में। पहला वार्तालाप था पिता और पुत्र के मध्य, और वर्तमान का जो वार्तालाप है गुरु और शिष्य के मध्य। शंड अमरक उनसे पूछ रहे हैं कि आप में ऐसी बुद्धि आई कहां से, इतने बच्चों को हम पढ़ाते हैं किसकी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई नहीं है, तुम्हारी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई कैसी है? बिगड़ी हुई इन दी सेंस में व्यंगात्मक भाव से कह रहा हूं, असुरों के लिए लगता था कि विष्णु भजन करना ये बिगड़ी हुई बुद्धि का लक्षण है ना, तो इसलिए षंड अमर को उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी बुद्धि इस तरह से कैसे हो गई। जैसे पिता ने पूछा था, पिता ने तो सीधा सीधा पूछा था कि भाई आपको कौन सी बात अच्छी लगती है, परंतु यहां गुरु सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब जो गुरुजी उनको पढ़ा रहे थे उनके हृदय में ये ज्ञान रंच मात्र भी नहीं था, है ना, स्पष्ट हो रहा है। इसका ध्वनि अर्थ यही है, यदि रंच भर भी होता तो प्रहलाद पर इतना सीधा सीधा आरोप कैसे लगाते। पीछे के श्लोक में वो कहते हैं वत्स प्रहलाद भद्रम ते, बेटा प्रहलाद आपका कल्याण हो, सत्यम कथया, सत्य कहो झूठ मत बोलना, बालान अति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्ज्यया, ये बुद्धि में जो विपरीत भावना है विपर्ज्य ये कैसे आए, जबकि भागवत में विपर्ज्य शब्द वहां आता है कि विपर्ज्य अस्मृति, विपर्ज्य शब्दों को उसको कहते हैं आवरण और विक्षेप, विक्षेप अने जो काम करना चाहिए वो काम जब जीवात्मा नहीं करता है उस स्थिति का नाम है विपर्ज्य। भयम तो द्वितीय विनिवेश अतः स्यात् ईशात अपेतस्य विपर्ज्य स्मृति, विपर्ज्य तो वहां है, करना चाहिए था भगवान की भक्ति पर कर रहा है संसार की सेवा, संसार उसके मन में बरसा हुआ है, पर यहां गुरुजी साफ साफ आरोप लगा रहे हैं ऐसा बुद्धि विपर्ज्य। अच्छा बताओ ये बुद्धि में जो भेद हुआ है ये दूसरों के द्वारा
यह आप में खुद में आ गया। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, इसका प्रवचन भी कर रहे गुरुजी, नारद जी के गुरुजी, सॉरी प्रहलाद महाराज जी के गुरुजी। कभी कभी शिष्य इतना होनहार, इतना आगे बढ़ा चढ़ा होता है, गुरु हो पिता हो उसकी प्रशंसा करने में भी चुकते नहीं है। ये कथा कर रहे हैं श्री नारद जी। अरे नारद जी युधिष्ठिर के सामने अपने शिष्य प्रहलाद जी की प्रशंसा कर रहे हैं। एक गुरु तो आरोप कर रहे हैं और दूसरे गुरु, वाह प्रहलाद कैसे है तुम्हारी बुद्धि, कैसे है तुम्हारी ज्ञान निष्ठा, इसकी तारीफ कर रहे हैं। नारद जी सच्चे गुरु थे प्रहलाद जी के, संड अमर का तो वे लोकाचार गुरु है, सामाजिक गुरु है, हिरण्यकश्यपु ने उनको नियुक्त कर रखा था। तो ये सब भूमिका के आधार पर हम चलते हैं तो इस श्लोक पर आता है। तो प्रहलाद महाराज जी मन ही मन सोचते हैं, गुरु जी वाकई बुद्धि का विपर्य तो आप में ही है, ये सारा प्रकरण पिछले क्लास में भी हमने कहा था। प्रहलाद जी सीधा एकदम हिट करते हैं बुद्धि पर, क्यों इतनी बुद्धि पर उनका नजर है, सीधा सीधा कहीं भी कहते हैं वो बुद्धि पर ही अधिक महत्व देते हैं। गीता में भी बुद्धि पर अधिक महत्व है कि कृपण लोगों की ऐसी बुद्धि होती है और ब्राह्मण लोगों की ऐसी बुद्धि होती है, कृपणा फल है तब बुद्धौ शरणम अनुच्छ कृपणा फल है तब सब बुद्धिमान मनुष्य सु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत, ऐसे अनेक स्तर पर बुद्धि की बात आ गई। क्यों ये बुद्धि की बात आती है, क्योंकि मनुष्य के पास सर्वोच्च धन है मित्रों, हम आप उनकी बुद्धि है, एक तो बात यह है। दूसरी बात है जिस रथ पर हम आरूढ़ हुए हैं, बुद्धि उस रथ की सारथी है। कहीं भी गंतव्य स्थल पर जाना है वहां पर भूमिका सारथी की अधिक होती है। सारथी खराब हो तो रथ बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, इसलिए बुद्धिमान अर्जुन ने भगवान को सारथी के रूप में चुना था। भागवत में भी कहा गया इदम् आहो शरीरम रथमिंद्रियाणि हयान भीषुन, आहो शरीरम रथमिंद्रियाणि हयान भीषुन। ये श्लोक भी सप्तम स्कंद में ही है। धीषणाम च सूतम, उसी श्लोक में हम भूल रहे हैं, धीषणाम च सूतम, सूत कहते हैं सारथी को। वहां भी नारद जी कहते हैं हे युधिष्ठिर धीषणा ही सूत है। धीषणाम तो सत्वम बृहत बंधु ईश सृष्टम, भगवान ने ये बनाया है, ये रथ हमको दिया है और ये रथ गढ़ता है चलता है, पर इसका सारथ्य करती है बुद्धि। इसलिए भक्तों को सत्संग में आकर अपनी बुद्धि को ऐसे बनानी चाहिए, ऐसे प्रशिक्षित करना चाहिए जो बुद्धि हमें ठीक ठीक मार्ग में ले जाए। इसलिए प्रहलाद महाराज इतना सारा महत्व देते हैं बुद्धि पर। हम भी देखते हैं पूरे भक्ति योग ही बुद्धि की करामत है, ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धि का अर्थ ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो बहुत दावा पेंच वाला वकील वाले बुद्धि नहीं, जो बुद्धि संसार के अनित्य नित्यता को विचार करने में सक्षम हो जाए और अपने हित के बारे में कम से कम सोचे, वो बुद्धि बहुत अच्छी बुद्धि है, वो पशु बुद्धि नहीं है। ये रही थोड़ी भूमिका। इसलिए इसी श्लोक में आइए, स जदा अनुव्रतः, स माने भगवान, जब अनुव्रत माने अनुकूल हो जाता है, वो भगवान जिस भक्त पर अथवा जिस व्यक्ति पर अनुकूल हो जाता है, उस व्यक्ति की जो पशु बुद्धि है वो विभिद्यते, विभिद्यते माने वी एक उपसर्ग है, भिद्यते माने नष्ट होना, छिन्न होना, खत्म कर देना, विभिद्यते माने संपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, वो भगवान की कृपा उसको नष्ट कर देती है। कैसी बुद्धि को, पशु बुद्धि को। बस पूरा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने इसे पशु बुद्धि पर ही लिखा है। प्रहलाद जी की बुद्धि भगवत अनुकूल बुद्धि और हिरण्यकश्यप की बुद्धि पशु बुद्धि है। ये पशु बुद्धि बहुत घातक बुद्धि है। ये पशु बुद्धि है क्या? परसों दिन परम पूज्य सार्वभौम प्रभु ने भी समझाया था, आज ये दास भी बैठा हुआ है। ये पशु बुद्धि क्या आपकी समझ में आई है? उन्होंने कहा था खाता कलम लेके आना चाहिए। बाकी अध्ययन तो यही होता है, पाठ एक अलग चीज है, अध्ययन एक अलग चीज है। अध्ययन का क्या अर्थ है, पाठ और अध्ययन में क्या अंतर है? क्या अंतर है? देखो संस्कृत में जितने शब्द होते हैं ना उनके बहुत गहरे अर्थ होते हैं। अयन माने निवास, अधि माने अंदर। हम भागवत के जब अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं तो ऐसे पढ़ लिया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये फलाना फलाना पढ़ लिया, लेकिन अध्ययन शब्द का अर्थ होता है उसके भीतर अपने आप को डाल देना, बिल्कुल उसी के भीतर चला जाना अथवा उसको अपने भीतर ले आना, इसी का नाम है अध्ययन। सो मित्रों ये बताओ ये पशु बुद्धि है क्या? क्या आपने चिंतन किया, क्या आपकी समझ में आई बात? क्या है पशु बुद्धि कोई बताए? अच्छा कभी कभी भक्त लोग कंप्लेन करते हैं, गोपेंद्र प्रभु कहता है कि तू प्रश्न पूछता है, मैं नहीं प्रश्न, प्रसंग ऐसा ही है, उन्होंने सार्वभौम प्रभु ने कहा था इसलिए हम देखो मित्र मित्र में ऐसे कि विचार विमर्श है, ये कोई कक्षा भक्या नहीं है, प्रवचन करने के लिए पंडाल होता है। पशु बुद्धि क्या क्या है प्रीतिवर्धन जी? पशु बुद्धि पर मेरापन करना तो ठीक है भाई, आपका उत्तर ही है, आपका मास्क है, अब मेरा रुमाल है, पूरे बुरा क्या है? घड़ी ये तो नहीं कहेंगे नरेंद्र मोदी की घड़ी है, भाई घड़ी मेरी है। पशु बुद्धि है क्या? यस नहीं, वो तो बहुत गहरी बात हो गई, एकदम सामान्य बात है। आप देखेंगे टीकाओं में आचार्यों, यस वो ये और कोई हाथ उठाया है? देखो सार्वभौम प्रभु ने कहा था कि हमको चिंतन करना चाहिए, हमको मान अपमान का ज्ञान होना चाहिए, हमको त्रिगुणातीत अभी नहीं होना चाहिए, मान अपमान यो स्तुल्यो स्तुल्यो मित्रारी पक्ष यो, ये बहुत बेकार बात है, ये अभी बिल्कुल नहीं चाहिए, अभी तो अपमान होना चाहिए, लगना चाहिए। ध्रुव महाराज जी को अपमान नहीं लगा होता उनको ध्रुव लोग थोड़ी मिलता है, ये बात हम बाद में कहेंगे। कभी कभी हमारी कथा आपको समझ में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन थोड़ी उदार चेतना से विचार करो, ये जो मैं मेरा वाला चल रहा है ये ज्ञानी भक्त प्रहलाद जी कह रहे हैं, ये त्रिगुणातीत अवस्था की बात कही जा रही है, वो ठीक है। पशु बुद्धि सब आप कहेंगे महाराज, पशु बुद्धि माने टीकाकारों ने लिखा है अविवेक, अविवेक अविवेक को कहते हैं पशु बुद्धि, माने विवेक नहीं है, जो विवेक रहित बुद्धि है उसी को कहते। उदाहरण के रूप में हम लोग देते हैं, देखते हैं ये बंदर है वृंदावन में बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे आप रोटी बंदरिया के बच्चे को दोगे वो बंदरिया इतनी बदमाश होती है वो उसका हाथ से रोटी छीन लेती, वो है ना। इस संसार में गरीबी में जब वो होता है कोई मां स्वयं मरती है और अपने बच्चों को खिलाती है, उसको पशु बुद्धि नहीं कहेंगे, उसको विवेक युक्त बुद्धि कहेंगे। बच्चा मेरा है, मैं मर जाऊं पर ये जीवित रहे, पर बंदरिया नहीं सोच रही है, बंदरिया उसे छीन करके खा रही है, उसको पशु बुद्धि कहते हैं, अविवेक है। अब प्रश्न उठेगा विवेक क्या है, व्हाट इज विवेक? विवेक को शास्त्रों में बताया कि हर बात का समाधान है मित्रों। विवेक शब्द का अर्थ होता है नित्या नित्य वस्तु विचार विवेक। बुद्धि का एक ऐसा फेज है, ऐसा पक्ष है जो विचार कर ले कि ये नित्य है और ये अनित्य है, ये क्षणिक है और ये परमानेंट है, ये इटरनल है, ये चिरंतन है, ये क्षणस्थाई है। इसी को विचार कर ले, नित्या नित्य विचार विवेक, उसी को विद्या कहते हैं, उसी को ईश्वरीय बुद्धि कहते हैं, उसी को डिवाइन इंटेलिजेंस कहते हैं। पशु बुद्धि क्या है? मैं और मेरा, इसमें अभिव्यक्ता है और पूरी अभिव्यक्ता में पूरी दुनिया छाई हुई है। ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई किसके चलते चल रही है? अभिव्यक्त के चलते। हमने एक रेखा खींची भूगोल पर, धरती पर, ये भूमि हमारी है, ये भूमि तुम्हारी है ना। आज अगर परीक्षित महाराज होते, किंग पुरुष वर्ष पर उन्होंने विजय पाई थी, चाइना कहते भारत का एक अंश है, तो लड़ते क्यों? विचार करके देखिए, लड़ाई हो रही है, चाइना वाले कह रहे हैं कि ये भूमि हमारी है, किंग पुरुष वर्ष के अधिकार हमारा है, और हम कह रहे हैं कि हिमालय के दक्षिण से और भारत महासागर के उत्तर की ओर जो भूखंड है उसके अधिपति हम हैं। हो गई लड़ाई, इसी को अभिव्यक्ता कहते हैं। भाई ना तो ये भूखंड तेरा है, ना तो ये भूखंड मेरा है, ये सारा भूखंड तो वो भूपति भूदेव का है, भगवान का है। इसलिए इसको पशुबुद्धि कहा गया, अविवेकी बुद्धि कहा गया। दूसरी बात, इनमें पशुता क्या है? पशुता यही है कि अपना स्वार्थ नहीं जानता। नते विदुहु स्वार्थ गति में ही विष्णु, वो स्वार्थ गति विष्णु को ना जानकर अपने स्वार्थ संसार को समझा है। सबसे प्रकृष्ट उदाहरण इस कोरोना काल में दुष्ट चिकित्सक, प्रत्यक्ष उदाहरण थे, थोड़ा समझने में सहूलियत होती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बहुत चिकित्सक है जिनके चिकित्सा के फलस्वरूप प्राण बचते हैं, पर मीडिया के द्वारा जो जो सब न्यूज प्रकट होती है उससे उससे जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे बुद्धि ढबांडुल होती है। अभी बिहार के घटना, एक महिला रो रो करके कहती है उसके पति को कोरोना हुआ, वो लेकर के हॉस्पिटल गई, उसके साथ छेड़खानी हुई, डॉक्टरों ने उस हॉस्पिटल हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने उसके शरीर के साथ खेल खेला, अंततः उसके पति को मरवा दिया, मर गया। सोचिए, जब कोरोना का तांडव डॉक्टरी वो भी देख रहे हैं, कई लोग एम्स से मर गए, लेकिन वो अपना स्वार्थ नहीं समझ रहे। इसको पशु बुद्धि कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कितनी बड़ी मूर्खता है। केवल वहां नहीं, यहां भी है, सब जगह में है। कल कोई कह रहा था कि पब्लिक को, किसी लेबर को महाराज बुलाते हैं, और मान लीजिए हॉस्पिटल में 100 बेड है, लेबर को बुलाते हैं, भाई 500 रुपए हम देंगे, वो बेड पे लेट जाओ, बेफिजुल का कोरोना केस देते हैं। जब कोई पेशेंट आता है उनको कहते हैं बेड खाली नहीं, अरे भाई कैसे कराओ ना, नहीं एक बेड का 500,000 रुपए लगेंगे। लो, उसको 1,000 रुपया देते हैं, 500,000 रुपए इधर से। इसको पशु बुद्धि कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसी को मेरा तेरा कहते हैं, इसी को अविवेक बुद्धि कहते हैं। इससे स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। कंस को वसुदेव ने समझाया, पुनर्जन्म तो निश्चित है भाई, जो तुम कर्म करोगे वही तुमको फल देगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों से द्रोह नहीं करता, दूसरों से हिंसा नहीं करता, दूसरों को पीड़ित नहीं करता, वही कर्म फल जाता। इसलिए भक्तों मित्रों, ये जो बुद्धि है, जदा जम अनुप्रतः पुनसाम पशु बुद्धि विभिद्यते, लेकिन ये जो चक्कर चल रहा है, ये जो समस्या चल रही है, पशु बुद्धि अविवेकता, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं जानना,
रथ को ड्राइविंग करके चला करके खड्डे में गिरा देना, ये तो पशु बुद्धि है। इसलिए सार्वभौम प्रभु ने कहा इस पर विचार करना चाहिए। विचार करीले चित्ते हवे चमत्कार। और चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को इस ऐसे पढ़ने के लिए कहा है, श्रीमद भागवत अर्थानम आस्वादो रसिके सह। हमारा कितना भाग्य है, भक्तों का कितना भाग्य है, भक्त रसिकों के मध्य बैठ करके ये परमहंस संहिता की चर्चा का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, उनके सामने, इनके ही सामने, श्री कृष्ण के सामने युधिष्ठिर को सुना रहे थे नारद जी, बड़े भाग्यशाली। सेम दृश्य यहां है, श्री कृष्ण के सामने ये दास सुना रहे हैं आपको, खैर वो नहीं है, पर तुलनात्मक दृष्टि से बिल्कुल वही नजारा है, वही नजारा है। इंद्रप्रस्थ में कथा चल रही थी, दुष्ट बुद्धि पशु बुद्धि विभिद्यते छिन्न भिन्न होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। भगवान की कृपा की आवश्यकता। तो इस श्लोक का मुख्य फोकस है, प्रहलाद जी कहते हैं चाहे जो भी हो, आगे के श्लोक में कहेंगे, ये जो मैं मेरा अपने स्वार्थ के बारे में ना जानना, ये पशु बुद्धि का लक्षण है, अविवेकी बुद्धि का लक्षण है। तो उसको थोड़ा विस्तार से कहते हैं, बोले इसका अधिकरण क्या है, ये पशु बुद्धि क्यों उत्पन्न हो गई, किसके आधार पर। जैसे आपके नेत्र है, आपके नेत्र अभी देख लेता है, लेकिन आपको अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए, यही नेत्र आपके काम नहीं करेंगे, यही नेत्र आपके काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार इस संसार में जो मोह ममता युक्त बुद्धि है, माई की बुद्धि है, पशु बुद्धि है, इसके पीछे कारण क्या है, अधिकरण माने आधार क्या है। विजय ध्वज कहते हैं देह। जिस समय आत्मा इस देह को स्वीकार कर लेता है, उसी समय ये सारी झंझट अपने आप आ जाती है। इसका अधिकरण, अधिकरण कहते हैं आधार को, आधारो अधिकरणम। ये देह को केंद्र करके आत्मा है, आत्मा इस देह को अपना मान लेता है, उसके बाद में मेरा पंचाल हो गया। जैसे होता है ना कि किसी एक दोष के कारण हजारों दोष पैदा हो जाते हैं। किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाओ, वो सबसे पहले पूछेगा तुम्हारे पेट में खाना पच रहा है। हमारे के प्रभु जी थे, वो अभी लॉकडाउन में नहीं आ रहे हैं, क्या नाम प्रभु जी, वो जो हमारे उड़ीसा के गदाधर, गदाधर प्रभु के पास चिकित्सा करने जाओ, वो कहेंगे तुम्हारी अग्नि धीमी है। कोई भी रोग की चिकित्सा करने जाओ, वो कहेंगे तुम्हारे पेट की अग्नि जो है धीमी है। और सही बात है, भोजन अगर पचता है, मोशन अगर सही क्लियर होता है, तो अधिकतर रोग नहीं होते। अल्सर होना, एसिडिटी होना, सर में दर्द होना, चमड़े में सुखापन आ जाना, ये सारा पेट में खाना नहीं पचने के कारण है। खाना पच जाए, भोजन पच जाए, तो सारा काम समाधान है। उसी प्रकार देहात्मा बुद्धि चली जाए, सारा काम खत्म, सारा समाधान एक ही काम से, जड़ खत्म तो न बजेगा, न रहेगा बंस तो न बजेगी बांसुरी। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं ये वैसे वैसे नहीं होने वाला है, ये पशु बुद्धि, ये मेरापन, ये अहम मम, ये जो आगे प्रहलाद कहते हैं अन्य एष तथा अन्यो अहम, ये दूसरा है, मैं दूसरा हूं, ये बुद्धि भेद बुद्धि नहीं जाने वाली है। कब तक, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। इसका अर्थ होता है बुद्धि के विचार की क्षमता बहुत ही छोटी है महाराज, इस क्षमता से अध्यात्म प्राप्ति नहीं होगी। ये मोह ममता से परे जाने वाली जो बुद्धि है, इतिहास में दो लोगों के सामने, अनेक लोगों के सामने, हमारे सामने दो देव है, एक है रंती देव, दूसरा है वासुदेव। एक है रंती देव, दूसरा है वासुदेव। वासुदेव में बिल्कुल ममत्व नहीं था, वो कीड़े से कहते हैं भाई यहां से गिर जाओगे तो मर जाएगा, यहीं रहना,
क्या विचार बुद्धि से ये कोई व्यक्ति कह सकता है? असंभव, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता सामान्य विचार के द्वारा। आपको लगता है? मैं, मुझे नहीं लगता, नहीं लगता। कीड़ा सो, वो घावों का जो कीड़ा है वो गिरता है, उनको उठा करके उस जगह में रखता है, वासुदेव जी रखते हैं और कहते हैं भाई यहीं पर रहो, यहीं तेरा भोजन है। बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, शास्त्रों की व्याख्या करने वाले, विद्वत्ता से युक्त व्यक्ति, बड़े बड़े पंडित, उनके सामने ये समत्व तो आता है क्या? वो तो दिग्विजय पंडित बनकर दूसरों को अपमानित करने के लिए पीछे नहीं हटते, कहते ये सर्टिफिकेट इसमें सब दस्तखत करो, तू हरा मैं जीता। हिंसा, साफ साफ हिंसा है, इसको पंडित ही थोड़ी कहते हैं। रंती देव 48 दिनों तक उपवास, एक थाली नसीब हुई और चारों में विभाजित कर देता है और अंत तक कहता है हे प्रभु अब तो परम शांति को हम प्राप्त हो जाएंगे। नकाम ए हम गतिमीश्वरात पराम अष्टर्धि युक्ताम अपनर्भवम वा आरती प्रपद्ये खिलदेह भाजाम अंतस्थितो येन भवन्ति अदुःखा। मित्रों, वही संसार का दुख मिटा सकता है, एक भक्त ही मिटा सकता है। इसलिए सभी लोगों का एक ही मत है, जब तक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार स्तर तक नहीं पहुंच जाता, भक्त नहीं हो जाता, वो क्या दुख मिटाएगा? सर्पग्रस्त ही वा परम, उसको सांप आधा निगल चुका है, क्या करेगा? इसलिए इस श्लोक के दो 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 टारगेट है, दो अक्षर, दो दो बातों को समझाने के लिए इसी श्लोक का अवतरण, ये हमारी मान्यता है। मान्य जैसे भगवान का अवतरण होता है, भागवत के प्रत्येक श्लोक का अवतरण कुछ कुछ विशेष लक्ष्य को साधन के लिए होते हैं। नंबर वन, ये जो बुद्धि में भेद है, ये अविविक्ता है, मेरापन तेरापन है, ये माया कृत है और ये माया किसकी है? भगवान की। इसलिए प्रहलाद महाराज ने साफ साफ कहा और आगे के श्लोक में कहे गए, बड़े बड़े वेदवादी ब्रह्मादि देखो यही कहते हैं, मुह्यन्ति जदवर्तमनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हेष भिन्नति मे मतिम। बोले मेरा भाग्य तो अच्छा है कि मेरी बुद्धि को भिद्यते चेत चक्रपाणी, चक्रपाणी ने मेरी मेरी बुद्धि को भेदन किया है, ये तो मेरा बड़ा भाग्य है। लेकिन बड़े बड़े वेदवादी ब्रह्मादि भी मोहित हो जाते हैं। इसका अर्थ होता है इस बुद्धि को यदि हम भेदवाना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं, एकमात्र उपाय है भगवान के पास प्रार्थना। मन क्रम वचन छांड चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। बिना कृपा के ये बुद्धि जाएगी नहीं। प्रश्न उठेगा, उस दिन ही कोई भक्त क्लास दे रहे थे, उपनिषद के आदेश लोग बोले थे, ऐसे तो आपने कहा था शायद, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न वेदया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्य तस्य एस आत्मा विवृणुते तनमुषाम। ये कठोपनिषद का मंत्र है। कठोपनिषद में एग्जैक्टली के और मंत्र भी है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न च प्रमादात तपसोबापि अलिंगात एतेर उपाय ही जत तेजस्तु विद्वान तस्येष आत्मा प्रविशति ब्रह्मधाम। ये दो श्लोक पाखा पाखी, ये दो मंत्र दोनों का एक ही अर्थ है, भगवान की कृपा। पहले पहले मंत्र में जब तक भगवान किसका वरण नहीं करेंगे तब तक दूसरा व्यक्ति उनका वरण नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य में लिखा, अभी अभी हमने पढ़ा था आपसे, मैंने कहा था भी कि ये बहुत, यदि कोई सोचता है कि नहीं नहीं एक है ना कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं
उसी की बुद्धि ठीक हो जाती है। अभी पढ़े थे हम लोग, है ना। सो इसी तात्पर्य में थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान जिनको चुनते हैं, निश्चित करते हैं, वही व्यक्ति भगवान को जान सकता है। पर भगवान किसको चुनेंगे? क्यों भाई प्रहलाद को चुना, हमको क्यों नहीं चुना? ये तीन उपाय ही जतते जस्तु विद्वान, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उपाय से यत्न करे। आचार्य जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में लिखते हैं कि भाई सत्संग के प्रभाव से यदि वो उन्मुख हो जाता है तो उनकी बुद्धि पे भगवान की कृपा अवतरित होती है। जीव गोस्वामी ने इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखा है क्रम संदर्भ। जब साधु और शास्त्र की कृपा से उन्मुख होता है, सन्मुख होता है, तब भगवान की कृपा होती है। मेरे ख्याल में चैतन्य चरितामृत में भी यही पद है, साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्णन मुख है सही जीव निस्तरे माया तहते छाड़े। साधु और शास्त्र की कृपा, सो मुख्य बात है कृपा। तो सभी लोगों ने कहा यह पशुतुल्य बुद्धि है। एक आचार्य हुए वीर राघवाचार्य, उन्होंने लिखा यस्तु सॉरी अनात्म भूत देवासुर मनुष्यादि शरीरगता अतएव असति दुष्ट अनर्थवह पशुबुद्धि पशुतुल्य बुद्धि। बहुत सुंदर भाव है। अनात्म भूत, जो आत्मा नहीं है, अनात्म है, चाहे कोई भी देह हो, चाहे देव हो, असुर हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, कुछ भी हो, देवासुर मनुष्यादि शरीरगता, जब आत्मा इन शरीरों में प्रविष्ट हो जाती है, अतएव अतएव माने इसके चलते, देयर फोर असती, उस बुद्धि को असती कहते हैं। न सती चिरंतन बुद्धि नहीं है, आज मनुष्य कहलाती है, परिचय दे देती है, कल वो अपना परिचय देने लगेगी, बुद्धि देने लगेगी, मैं देवता हूं, परसों वो कहेगी मैं किन्नर हूं, इस प्रकार बुद्धि में भ्रम आ जाता है। उसी बुद्धि को कहते हैं दुष्टा। दुष्टा माने दूषित बुद्धि, पॉल्यूटेड बुद्धि है दुष्टा बुद्धि। और वो ही बुद्धि जो दूषित हो गई है, जो पॉल्यूटेड है, अनर्थावहा, यानी कि सारे अनर्थों को आवाहन करके ले करके आ जाती है। इसलिए हमारे अनर्थ हमारे दोषों को बहन करके हम ही लाए हैं, दूसरा कोई नहीं लाता। कितने सुंदर सुंदर भाव देते हैं आचार्य लोग। अनात्म भूत देवासुर मनुष्यादि शरीरगता अतएव असति दुष्टा अनर्थावहा। इसलिए हमारा भी निवेदन है, व्यक्ति को चाहिए कि भगवान ने जैसा ही कहा, मयैव मना अदच्छ मई बुद्धिम निवेशाय, जिसकी बुद्धि विचार पूर्वक भगवान की शरणागत को स्वीकार किया है, ऐसे भक्त का संग निरंतर करते रहना चाहिए और बारंबार भगवान से ये इसी की कामना करते रहना चाहिए। प्रभु हमें ऐसे भक्त का संग दीजिए जिनकी बुद्धि सटीक विचार करती है, भगवान को अपना इष्ट मानती है और हमारी गाड़ी को, हमारे रथ को ठीक से चला करके ले जाएगी। बारंबार बारंबार संगात संजायते कामः, भगवान ने कहा संगात संजायते कामः, इसको आप अच्छे दृष्टि में ले जाइए। संगात सत्संग से काम माने ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, वहां पर भगवान ने इसको दोष दृष्टि में दिया है, संगात संजायते कामः, हम इसको अच्छी दृष्टि में लेंगे। संगा सजायते कामः, काम माने ईश्वर प्राप्ति, तो भक्त संग से काम उत्पन्न हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति की इच्छा होगी। इसलिए मित्रों बार बार आचार्यों ने कहा है कि ये बुद्धि जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण धन है, भगवान ने बहुत अच्छा वो किया है और इसीलिए ठाकुर जी ने हमको बुद्धि दी है। इसी मनुष्य तन में हम ब्रह्माव बोध धीषणाम, इस बुद्धि में ब्रह्म का अवतरण कराएं। भागवत के एकादश स्कंद में एक श्लोक है और भगवान ने उद्धव से कहा है, सृष्ट्वा पुराण विविधानि अजयात्म सत्या,
भगवान अज ने, भगवान श्री नारायण ने अपनी शक्ति माया से सृष्टवा पुराणी विविधानी अजयात्म शक्तियां सरिसृप पशुन खगदन से मत्स्यान तेस्ती रतुष्ट हृदयान पुरुषम विधाय ब्रह्मा बबोध धीषणा मुदमाप देव। भगवान ने भिन्न भिन्न शरीर को उत्पन्न किया अपनी माया शक्ति से, पशु वृक्ष कीट पतंग देव, लेकिन किसी शरीर से उनको संतुष्टि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? किसी ने उनको पहचान नहीं पाया। कोई पेरेंट्स, कोई पिता माता ऐसे बच्चों को उत्पन्न करे जो विकलांग हो, जो बोल ना सके, गूंगे हो, बहरे हो, क्या पिता माता को अच्छा लगेगा? उनका मन संतुष्ट किया होगा? ऐसे 100 बच्चे पैदा हो जाए, वो पिता माता जीवन में सुखी नहीं होंगे। पर एक बच्चा हो और अपने नन्हे मुने तुतली तुतली बोली से माँ कह दे, पापा कह दे, वो पिता माता को परमानंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार भगवान ने अनेक पूर्व बनाया, सृष्टवा पुराणी विविधानी अजय आत्म शक्तिया अजय वृक्ष सरिसृप पशुन खगदन से मत्स्यान तेजते ही रतुष्ट। भगवान को संतुष्ट नहीं हुई। पुरुषम विधाय, उन्होंने मनुष्य को बनाया। क्यों? ब्रह्म अवबोध अधिषणाम, भगवान ने उनमें जो बुद्धि दी उस बुद्धि में वो ब्रह्म को अवबोध यानी कि ब्रह्म को समझ पाएगा, तब भगवान को प्रसन्नता हुई। हाँ हाँ, कोई ना कोई मुझे पापा पापा कह करके बोलेगा। इसलिए मित्रों, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि पशु बुद्धि का परित्याग करे। और ये संसार अनित्य है, कोरोना काल बहुत अच्छा है। एक संत ने कहा, विपत्ति बहुत भली है। वो रहीम दास ने एक दोहा कहा, वो हमें याद नहीं हो रहा है। उसका अर्थ है कि प्रभु विपत्ति बहुत अच्छी है, उस विपत्ति काल में अच्छे और बुरे अपने और परायों का ज्ञान बढ़िया होता है, संपत्ति में वैसा ज्ञान नहीं होता। कोरोना काल में और देखना क्या बाकी रह गया, तुम्हारे परिवार लोग पुत्र पिता की मुखाग्नि नहीं दे सकता। कोई किसकी मदद है ना महाराज, चाह करके भी नहीं कर सकता। जिस हॉस्पिटल से आप बचने की उम्मीद करके जाते हो, तुमको रेमडेसिविर देकर मरवा देंगे, क्या करोगे? यमराज जी, यमदूत यही कहते हैं, वो विष्णुदूत यही कहते हैं, भाई जिनकी गोद में व्यक्ति जीने के लिए सर रखा है, वही उसका सर कत्ल कर रहा है, क्या भरोसा है? तो अनित्य विचार करने में कोरोना बहुत मददगार है। हमारे पहले जो पीढ़ी आई उन्होंने ऐसी विपत्ति नहीं देखी थी, और हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी वो देखेगी नहीं देखेगी हम लोग नहीं जानते, पर देख तो रहे कि महामारी का तांडव कैसा तांडव है। इसलिए इस महामारी का महोषधि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भयभीत है बुद्धि, पर परिवशीकृत है अनर्थकृता बुद्धि, ड्राइविंग नहीं जानती। क्या है बुद्धि? यही हिरण्यकश्यप की बुद्धि है। जो तात्पर्य में प्रहलाद ने, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, हा हा हा, कि भाई हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज से पूछा, ये बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई? किसने तुम्हें इस तरह की बुद्धि उत्पन्न की है? क्या तुमने स्वयं चेतना विकसित की? चूंकि तुम छोटे से बालक हो, अतः किसी ने अवश्य ही तुम्हें इस प्रकार से बहलाया फुसलाया है। इस प्रकार के हिरण्यकश्यप में जो विपरीत बुद्धि है, षंड अमृत में जो विपरीत बुद्धि है, ये बुद्धि जाएगी जब हम भगवान के कृपा के लिए आतुर होकर के प्रार्थना करेंगे। और सभी आचार्यों ने यही कहा। वृंदावन दास ठाकुर ने तो भक्ति की परिभाषा ही अलग प्रकार से दे दी, अलग नहीं सही प्रकार से दी है। उनसे पूछा गया, भाई भक्ति जो क्या है, भक्ति क्या है, आप लोग क्या समझते हो भक्ति क्या है, क्या है भक्ति? एक तो हाथ उठा कर कहो, भाई 20 साल हो गए, कोई तो हाथ उठाओ कि भाई भक्ति यही हम समझते हैं, क्या भक्ति है? हाँ, भक्ति है प्रतिपूर्ण सेवा। और क्या भक्ति है? गुरु की आज्ञा का पालन करना, बहुत अच्छा है। और क्या भक्ति है? पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धाना, भक्ति कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना। बोले सबकी भक्ति अलग अलग हो सकती है, लेकिन भक्ति है मित्रों कृष्ण का स्मरण करना। और हे कृष्ण, इतने दिन बीत गए, 20 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, झुरियां पड़ गई, काले बाल हमारे श्वेत वर्ण के हो गए, कब कृपा करोगे? रोते रहना। कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, ये वृंदावन दास ठाकुर। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो, कब प्रभु कृपा करोगे? हमारी बुद्धि से विचार करके ये बुद्धि जाएगी नहीं। कितन हो आप परीक्षा कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, रंती देव और वासुदेव नहीं बन सकते। विचार से क्या होगा? कृपा 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 कृपा। इसलिए प्रहलाद महाराज ये दो बातों पर बहुत ही ध्यान आकर्षण कराते हैं कि भाई जिस पर भगवान अनुकूल हो जाए उसकी बुद्धि से पशुबुद्धि चली जाए। प्रश्न उठेगा भगवान अनुकूल कैसे होंगे? भगवान अनुकूल होंगे जब हम रो रो करके उनको अनुकूल होने के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके अनुकूलता से परिणाम क्या होगा? मैं और मेरापन कट जाएगा। मैं और मेरापन कटने से क्या होगा? अपना महत्व का विस्तार होगा। वसुधैव कुटुंबकम, जो भी मैं देख रहा हूं वो सब मेरे हैं। और धन्य है भारतवर्ष जिनके वो वहां पर लिखा हुआ है, जो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको दिल्ली का जो नहीं नहीं जो असेंबली लोकसभा, लोकसभा में लिखा हुआ है अयम निजो परो व्यक्ति चेतसाम गणनाम लघु चेतसाम। शास्त्र का प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा लोकसभा के दरवाजे पर लिखा हुआ है। अयम निजो परो व्यक्ति गणानाम लघु चेतसाम उदार चेतनानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत का भा, ये ज्ञान है प्रहलाद महाराज जी का, यही ज्ञान है। इसलिए इसी ज्ञान की चर्चा के लिए, इसी विचार के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। समय हो रहा है 5 मिनट का समय है। हम सोचते हैं प्रभु जी ने भी कहा था प्रश्न उत्तर होना चाहिए। मेरे ख्याल में हमने प्रयास पूर्वक हम कोशिश करते हैं कि श्लोकों का पूरा पूरा अर्थ लेके समझाया जाए। तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, बाकी जिज्ञासा के लिए थोड़े समय रखते हैं। हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं, हरे कृष्ण, या तो कमेंट कुछ भी। प्रसाद पाओगे, लॉकडाउन के टाइम कोई आने वाला है नहीं, तुम जाओगे जो तुम्हारे भाग्य में है मिल जाएगा। बाकी दिनों में प्रसाद शॉर्टेज होने की संभावना होती है, इन दिनों में नहीं है, क्योंकि जो है जो रहेगा तुम खाओगे, तुम्हारे लिए बना है। तो 5-7 मिनट लेट हो जाए कोई बात नहीं, चिंता मत करो। प्रभु जी सार्वम प्रभु ने कहा था कि श्लोक लंबा चलना चाहिए। कुछ आप कहेंगे, कुछ मंतव्य देंगे? प्रभु दंडवत, प्रभु दंडवत। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही सही। हाँ यस 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 यस। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भीष्म ने भी बुद्धि लगाई। यस यस, भक्ति योग है। यह यस राइट।
ये इसी बात की चर्चा मेरे ख्याल में ये जीव गोस्वामी ने लिखा है कि भाई सन्मुख यह धन्यवाद। और कोई महाराज आप कुछ बताएं? महाराज आप कुछ ना कुछ दीजिए, फ्लेवर दी क्लास फ्लेवर। यस 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 हाँ हाँ यस हाँ हाँ जी हाँ जी क्या कर सकते हैं अब, कैसा है दुआ मान भली
जो थोड़े दिन बोए।
हाँ
में
जान परत सब को तो इसमें पर महाराज किसका हाथ है, वो कौन क्या कर सकता है ऐसे दो साल पर रहीमन विपद हूँ भली। अच्छा देखा भी गया है विपत्ति के समय में जितना परिवर्तन और जितना जितना हृदय में आवेग हुआ है संपत्ति में उतना हुआ ही नहीं। कुंती का जो भाव है विपत्ति में ही है, जितने जितने लोग विपत्ति में। हाँ एक भाव में कहना इसमें भूल गया, खैर मैं कहा था ये मैं मेरापन ये जो भेद गति ये जो है ये वाकई ज्ञान की चर्चा है। प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्ते करते हैं, हमारे लिए इस विचार के धरातल पर ना जाकर जिस स्टेज में हम है ना उसी स्टेज में रहना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप हाथी को मगर ने पकड़ा, हाथी यदि ये सोचने लगे अरे मैं क्या हूं मेरा शरीर जैसा ही है मगर का शरीर वैसा है, वो मगर खा रहा है और क्यों किसी को खा रहा है, ये बहुत दिक्कत। तो मैं मेरापन में भी कुछ फायदा है क्योंकि भाई मायाकृत भले ही हो पर मैं मेरापन में व्यक्ति आर्त तो होता है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो रक्षा करो। तो हमारे गुरु महाराज एक जगह में कहते हैं जब अदिति जी ने वो पयोव्रत किया, कश्यप जी ने जो ज्ञान दिया अदिति को, महाराज जी कहते हैं वो ज्ञान को ग्रहण नहीं किया अच्छा हुआ। वो ज्ञान अगर अदिति ग्रहण कर लेती तो उनके घर में भगवान वामन देव का आविर्भाव नहीं हुआ होता। सो मैं मेरापन का भी कुछ फायदा है, उसमें जब विपदा आती है वो आता है तो व्यक्ति बहुत बहुत दयनीय अवस्था में भगवान का शरणापन्न होता है और शरणापन्न होकर पुकारता हो तो भगवान की कृपा होती है। हाँ जी हाँ जी
तो नहीं
था। नहीं, ये आप जानते हैं जानकर समान दर्शन करना मतलब ऐसा नहीं कि भाई पशु को मान लीजिए हम समान, हमारे घर में गाय है और हमारे घर में अपना भाई है तो भाई को चपाती देंगे गाय को घास देंगे, गाय के लिए बढ़िया मार्बल फ्लोर करेंगे तो उनके लिए घातक है। आप जानते हैं गाय को दोनों खा कहते हैं, कई लोग चतुर नख होते हैं कई लोग पंचनख होते हैं। हमारे गौशाला हम जाते हैं रोज तो जो ईंट वगैरह डालते हैं उसमें गायों को की बीमारी होती है। क्या बीमारी? उनके नख की जो संधि है वो साफ नहीं होती, उसमें कीड़े पड़ते हैं। इसलिए गायों को बालू में मिट्टी में जब गाय बछड़े चलते हैं ना तो उनके जो दो नख उसके भीतर साफ रहता है, तो उनके लिए धूल मट्टी जमा करके उनमें चलाना ठीक है लेकिन मनुष्य के लिए मार्बल बिछा देना ज्यादा अच्छा है। ये समता है माने जीव मात्र। चाणक्य पंडित ने कहा मातृवत परदारेशो परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सपश्यति, यही अध्यात्म दृष्टि है। यानी कि जीवात्मा को चाहिए कि भक्त को चाहिए कि अपने समान, जैसे हमको दुख हो रहा है हमको सुख हो रहा है तो क्या करने से दुख सुख नहीं होगा, तो उस हिसाब से देखे। नहीं तो हमारे लिए जो चाहिए पशु के लिए नहीं चाहिए, ऊपरी व्यवहार में देखे, पर द्रव्य जैसे भी आप समझ लीजिए। तो आप सिल्की पहनते थे, गाय को लेके सिल्की पहना देंगे तो खराब हो जाए, सब तो चीज फाड़ देगा वो। समानता ऐसे ही है, और कुछ बोलेंगे? पशु बुद्धि ठीक नहीं है, जैसे देश देश में लड़ाई है, मैं मेरापन है, ये ठीक नहीं है। और भक्ति करने से ना उदार हो जाता है व्यक्ति। दो उदाहरण दिया मैं तो बहुत ही संक्षेप में, केवल उनका नाम लिया, आप अपने रूम में जाके पढ़ना, रंती देव और वासुदेव। वासुदेव की कथा है चैतन्य चरितामृत के मध्यलीला के सात या सात, कैसे सात ना, सात ना सप्तम अध्याय में, हाँ उसके बाद रामानंद प्रसंग और श्री रंती देव का प्रसंग है श्रीमद् भागवत के नौवें स्कंध का शायद 21-22 अध्याय में। समता के दृष्टि में आप पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत में, सनातन गोस्वामी के पास भगवान चैतन्य महाप्रभु ने समता दिखाई है ना। ये सब जैसे सच बात है, श्लोक तो एक छोटा सा, विचार किया जाए तो विचार बहुत हो सकता है। द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान, यही सब एतमो धर्म, यही यही भालो यही मंदो यही मनोधर्म, ये सब लिखा हुआ। किम भद्रम किम अभद्रम, द्वैतस्य अवस्तु अवस्तु न कियत् बचोदीतम तद अनुरतम मनसा ध्यात्मी वच। जो मन से ध्यान किया जाता है, जो वाणी से बोला जाता है, सब झूठा है, अवस्तु है, वस्तु उसके पहुंच से बिल्कुल बाहर है। तो इस पर बहुत ज्यादा फेर में फंसा रहना अच्छा नहीं है, यही बुद्धि की बीमारी है। दुष्टा, दुष्टा माने दूषित है मेरा तेरा, तो वो बुद्धि लग जाए। जैसे कई बार होता है ना, बाहर के लोग जो कभी कभी बेमतलब के शब्दों का हेर फेर करते हैं, बुद्धि एक ही है, 10-50 बुद्धि नहीं होती है। वो बुद्धि भगवान में लग जाए वो हितकारी है, वही बुद्धि संसार में लग जाए वो अहित कर देगी। जो स्टीयरिंग, 10-50 स्टीयरिंग थोड़ी होती है, वो स्टीयरिंग एक ही है, ड्राइवर भी एक ही है। वो बैक गियर डाले तो गाड़ी पीछे, और फ्रंट गियर डाले तो गाड़ी आगे है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए और बुद्धि को मार्जित करना चाहिए बारंबार बारंबार। वो इधर उधर चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कोई कहेगा मति ये है, कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा बुद्धि जोग है। हाँ, ये सब शब्दों का कुछ कुछ आलंकारिक प्रयोग है। बुद्धि जब भगवान में लग जाएगी वही बुद्धि जोग है, कोई भी कार्य भगवान से जुड़ जाए वो योग है। अच्छा, बुद्धि योग, उस भक्ति को बुद्धि योग किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बुद्धि का काम ज्यादा है। क्या ज्यादा है? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, समर्पण के लिए आनुकूल्य से संकल्प आदि समझना पड़ेगा, उनकी जगह में रहना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, सारा काम है। सब बहुत विचार की आवश्यकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दो विचारकों को अपने पास रखते थे, एक है रामानंद पटनायक, दूसरे है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, बड़े बड़े विचारक। रामानंद की बुद्धि बड़ी तेज, भक्ति भी तेज, और स्वरूप दामोदर वो तो साक्षात बृहस्पति। अब महाप्रभु के पास कौन कम था? सार्वभौम भट्टाचार्य ना कम थे, स्वरूप दामोदर कम थे, ना रामानंद पटनायक जी कम थे, कोई कम नहीं था। यस, पशु बुद्धि देखो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक रहेगी। आप पूरे क्लास में थे कि नहीं थे? मैंने क्या कहा, पशु बुद्धि किसकी जाएगी? जब भगवान की, जिस पर भगवान की कृपा होगी। नहीं तो मरने से कुछ नहीं होगा, मरने से दूसरा शरीर तीसरा शरीर पशु बुद्धि नहीं जाएगी, मेरा तेरा पिरापन नहीं जाएगा। अरे स्वर्ग में इंद्र को है, सबको है, ब्रह्मा जी तक है, आप समझ रहे हैं? ध्यान से समझे, पशु बुद्धि अर्थ समझेगा ना, अभिवेक, मेरा तेरा। अच्छा ये संसार में आपका कुछ है, आपका कुछ है, क्यों नहीं है? अरे कृष्ण को गोली मार, कृष्ण कुछ नहीं है, आपका कुछ है, आप फील करते हो। समस्या यही है, अध्यात्म में आगे चलने के लिए आंखों को खुल कर रखना चाहिए, आंखें खुल माने विचार करना चाहिए। मैटेरियल में भी हम बिल्कुल समझते हैं हमारा कुछ भी नहीं है, जो हम कहते हैं वो भी नहीं है ना, ये देह पर हमारा कंट्रोल है ना, यहां पर है ना, धरती पर है ना, बैंगन हम बनाते हैं ना, आलू हम बनाते हैं ना, धान हम बनाते हैं ना, गेहूं हम बनाते हैं, अपने आप सब होता है। केवल मोह के चलते कुछ दिन के लिए मैं मेरापन है, इसलिए पशु बुद्धि मरने के बाद भी रहेगी। हाँ बढ़िया कारण है, मोबाइल चेंज करने से क्या होगा, सिम तो वही है, वही एयरटेल है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सिम तो वही है, आत्मा वही है। एक बार वैष्णव महाराज हमारे दोनों गए थे मुंबई में जुहू टेंपल के सामने जो ब्रह्मा कुमारी है, मैं उसी दिन वैष्णव महाराज का गुस्सा देखा। उसने कहा अरे महाराज ये बताओ, तब तो प्रभु थे, बोले केले के पेड़ और बरगद के पेड़ बराबर होगा कि महाराज ने कहा इतने मूर्ख तुम हो हमको पता नहीं था। अरे भाई केले के पेड़ हो बरगद का पेड़ हो तो क्या हो गया, आत्मा तो डिफरेंट वो है ना, एक ही। वो समझा रहे थे केले के पेड़ में केले का आत्मा है और बरगद के पेड़ में बरगद का आत्मा है, हमें को बना रहा है। सो ऐसा नहीं है, चले चले, हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवत की जय, हरे कृष्णा।